थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दानियल की भविष्यवाणी ऐसी सिद्धता से पूरी हो रही है कि आलोचक मानने को तैयार नहीं है कि वे भविष्यवाणियां हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आज आपने हम में से प्रत्येक के जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बातचीत करते हैं, आप हमें सिखाते और समझाते हैं। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के पास बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखें तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में, हृदय में बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है पिताजी, हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुए और चंगाई दें, उन्हें शांति और आनंद दें। आज के वचन से आप उन्हें सामर्थ प्रदान करें, आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो अब आता है छोटा सिंह, जिसे हमने अध्याय 8 में देखा था। एंटियोकस एपिफनस अब एक पतित मनुष्य है। एंटियोकस एपिफनस आता है, वह सीरिया का राजा था और ऐतिहासिक चरित्र है। तो मेरे मित्रों, इसे हमने अध्याय 8 में छोटा सिंह कहा है। यहाँ अध्याय 11 उसके 21 पद में जब हम आते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले से तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। यह भविष्यवाणी सेल्यूकस वंश के राजा एंटियोकस के अधिकांश रूढ़िवादी टीकाकार यही बात कहते हैं। इस बाइबल अंश को सीधा इस मनुष्य से संबंधित मानते हैं। यह भविष्यवाणी एंटियोकस एपिफनस के इतिहास के दास्तान के समान बैठती है। यूं कहें कि यह इतिहास के दास्ताने के समान है। वह ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक होने के कारण भावी पाप के पुरुष का चरित्र चित्रण है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एंटियोकस एपिफनस 195 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा था। वह अपने इष्ट निंदा के कारण घृणित माना गया। वह शांति की योजना लेकर सिंहासन पर बैठा था, जैसे ख्रिस्त विरोधी भी भविष्य में करेगा। वह 3.5 वर्ष तक शांति बनाए रखेगा और जब मनुष्य उस युग को प्रभु राज समझने लगेंगे, तब वह महाक्लेश अर्थात महासताव को आरंभ कर देगा। एंटियोकस विश्वघाती और चाटुकार था। मेरे प्रियो, ऐसे मनुष्य के साथ हमें सावधान रहना है। ऐसे मनुष्य कलीसियाई सेवा में भी और वे कलीसिया को भी सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। हमें स्वार्थ परायण लाभ के लिए कलीसिया के सदस्यों को प्रसन्न करने वाले सेवकों की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, हमें खरे और स्पष्ट कहने वाले प्रभु के दासों की आवश्यकता है, जो सत्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। ऐसे मनुष्य कम हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे अभी हैं, वे अभी खत्म नहीं हुए हैं। दानियल के पुस्तक 11 अध्याय उसके 22 से 24 पद में लिखा हुआ है, तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहक कर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना भी करता रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वाचा का प्रधान संभवतः महायाजक ओनियास तृतीय था, जिसे एंथ्यूकस ने छल से मरवा दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 25 से 28 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाप को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थ्य सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह पद एंटियोकस की विजय और मिस्र के विजय का वर्णन करती है। मिस्र देश विजय से उससे बहुत लूट और संपदा मिलती है। यहाँ पर लिखा है कि वे एक ही मेज पर बैठकर आपस में झूठ बोलेंगे। वह एक झूठा मनुष्य था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उस युग की सभाएं भी आज के समान कागजी कार्यवाहियां मात्र ही थी। हम देखते हैं कि समझौते केवल कागजों में ही होते थे। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम पढ़ते हैं, नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों की जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। एंटियोकस ने मिस्र के विरुद्ध दूसरा युद्ध छेड़ा, परंतु रोम की नौसेना कित्तियों के जहाज के कारण वह सफल नहीं हुआ। उसने इसराइल के साथ बांधी अपनी वाचा को तोड़ी। यहाँ ध्यान दीजिए कि कुछ यहूदियों ने विश्वासघात किया था। पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। दानियल 11 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। मेरे प्रियो, 170 ईस्वी में एंटियोकस ने यरूशलेम में 100,000 से अधिक यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने नित्य की अन्न बलि हटाकर सुअर का खून वेदी पर चढ़ाया था और पवित्र स्थान में बृहस्पति की मूर्ति को स्थापित कर दी थी। यह विनाश करने वाली घृणित वस्तु थी। यह वह घृणित वस्तु नहीं है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा था। वह तो एक भावी घटना है। वह ख्रिस्त विरोधी द्वारा स्थापित की जाएगी। वह शायद अपनी ही मूर्ति पवित्र स्थान में स्थापित करवाएगा और लोग उसको भी डर से दंडवत करेंगे। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय के 32 पद में लिखा है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। ध्यान दीजिए, इसराइल में यहूदा की भूमिका निभाने वाले भी अनेक थे, परंतु परमेश्वर के भय मानने वाले भी थे जो खड़े रहे और विरोध उन्होंने किया। इसी समय परमेश्वर ने मकाबियों को उठाया था। 166 ईस्वी पूर्व में याजक मत्तत्याह ने इससे ईश निंदा का विद्रोह किया था। मकाबी का अर्थ है हथौड़ा। यद्यपि उनका नाम धर्मशास्त्र में नहीं है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन्हें उस समय के लिए चुना था। दानियल के पुस्तक 11 अध्याय उसके 33 और 34 पद में लिखा हुआ है, लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह नए और पुराने नियमों के बीच का समय है और कष्टों की कहानी है। इस युग में भी गिदोन, दाऊद, एलिया, यर्मिया या दानियल के समान ईश्वर भक्त थे जिन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं साहस के साथ परमेश्वर की सेवा की थी। दानियल 11 अध्याय के 35 पद में लिखा है, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। लिखा है अंत के समय। यहाँ भविष्यवाणी एंटियोकस से ख्रिस्त विरोधी के समय में चली जाती है। अब उस समय के इतिहास से भविष्य में जाएंगे, परंतु दानियल के समय में यह भविष्यवाणी ही थी जिसे हम देख रहे हैं। आज निसंदेह कुछ भविष्यवाणी इतिहास बन गई है क्योंकि वे पूर्ण हो चुके हैं, परंतु शेष भविष्यवाणी अभी भावी घटना है जो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। मित्रों, आगे हम देखेंगे पाप के पुरुष का जहर और उसकी प्रकट इच्छा। आइए हम पढ़ें दानियल 11 अध्याय उसके 36 पद में, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। मेरे मित्रों, यहाँ इतिहास समाप्त होता है और भविष्यवाणी आरंभ होती है। अब लेख एक घृणित मनुष्य से हटकर एक विषैले मनुष्य की ओर बढ़ता है जो असीमित समय का अंतर पार कर रहा है। निसंदेह एंटियोकस एपिफानस एक घृणित मनुष्य था, परंतु वह पद 36 से 39 में वर्जित राज्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। एंटियोकस ख्रिस्त विरोधी का प्रतिरूप है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह धर्मशास्त्र प्रकट करता है कि ख्रिस्त विरोधी प्राचीन यूनान राज्य की सीमाओं से ही निकलेगा, राजनीति से संबंधित ख्रिस्त विरोधी उभरेगा, जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। रोमी साम्राज्य से उठने वाला एक अन्य जाति व्यक्ति होगा, एक धार्मिक ख्रिस्त विरोधी भी होगा जो स्वयं को मसीह कहेगा। वह इसराइल से उभरेगा, वह भेड़ की खाल में भेड़िया होगा। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र में ख्रिस्त विरोधी के अनेक नाम हैं। भजन संहिता 5:6 में हत्यारे और छले मनुष्य, भजन संहिता 10:2-4 में दुष्ट, भजन संहिता 10:18 में मनुष्य जो मिट्टी से बना है, भजन संहिता 52:1 में वीर, भजन संहिता 55:3 में शत्रु, भजन संहिता 74:8-10 में द्रोही, भजन संहिता 140:1 में बुरे मनुष्य, यशाया 10:5-12 में अशुर, यशाया 14:2 में बेबीलोन का राजा, यशाया 14:17 में भोर के चमकने वाले तारे, यशाया 16:4-5 में नाश करने वाले, यर्मिया 6:26 में नाश करने वाला, यशाया 22:25 में खूंटी, यशाया 25:25 में क्रूर लोगों, यहेजकेल 21:25-27 में इसराइल दुष्ट प्रधान, यहोना 5:43 में अन्य कोई अपने ही नाम से आएगा, दानियल 8:23 में क्रूर दृष्टि वाला, मती 24:15 में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, दानियल 9:27 में उजाड़ने वाला। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, ख्रिस्त विरोधी हठी होगा। यह प्रभु यीशु के स्वभाव से कैसा विपरीत है। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, वरन परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, जिसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:30 में उसने कहा। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अपने आप को ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। 7 में ख्रिस्त विरोधी को छोटा सिंह कहा गया था, वह बड़ा सिंह बनेगा। यह भी प्रभु यीशु के स्वभाव से कैसा विपरीत है। फिलिपियों की पत्री 2:5-8 में पौलुस ने प्रभु यीशु के लिए लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मसीह यीशु दीन व्यक्ति है, न कि उसने अपने आप को बड़ा किया, परंतु ख्रिस्त विरोधी अपने आप को बड़ा करेगा। आगे हम देखते हैं, अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:4 में पौलुस ख्रिस्त विरोधी के बारे में लिखता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 13:8 में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर के विरुद्ध निंदा का विद्रोह है, जो इस हठी राजा को मानववाद की अंतिम और तर्कसंगत अभिव्यक्ति कहता है। वह परमेश्वर विरोधी का स्वभाव सूचक प्रतिनिधि है, हमारे पुराने स्वभाव का प्रतीक है। रोमियो की पत्री 8:7-8 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मनुष्य का सांसारिक मन ख्रिस्त विरोधी की ओर फिर जाएगा। मनुष्य अपना अगुवा या शासक चुनता है तो वह कैसा होता है? वह वैसा ही होता है जैसी उसकी प्रजा होती है, और यही कारण है कि हमारे नेता ऐसे शोचनीय होते हैं। यहाँ परमेश्वर कहता है कि वह छोटे से छोटे को भी सिंहासन पर बैठाता है। आगे हम देखते हैं, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। वह हठी राजा आरंभ में कुछ समय तक सफल होगा। परमेश्वर दानियल के 70वें सप्ताह के दूसरे आधे भाग तक इसकी अनुमति देगा। आगे हम पढ़ेंगे दानियल 11 उसके 37 पद में लिखा है, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। इस पद से तो ऐसा लगता है कि ख्रिस्त विरोधी एक इसराइली ही होगा, परंतु यह अभिव्यक्ति किसी मसीही जन से भी संबंधित हो सकती है या किसी अन्य जाति से। वह जहां से भी हो वह अपने पितरों के परमेश्वर को नहीं मानेगा। इतिहास में इसके उदाहरण है। रूस का स्टालिन कभी सेमिनारी का विद्यार्थी था। जैसा मैंने पहले कहा है कि इस पद के दो मनुष्य होंगे, इन दोनों की चर्चा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 में की गई है। एक राजनेता होगा जो रोमी साम्राज्य के यूनानी क्षेत्र से उभरेगा, वह इसराइली नहीं होगा। दूसरा पशु एक धर्म गुरु होगा, वह प्रभु यीशु की नकल करेगा। मेरे विचार में वह एक इसराइली होगा। यहां पर हम पढ़ रहे थे, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। यह इब्रानी स्त्रियों की मनोकामना के संदर्भ में है, क्योंकि वे मसीह की मां बनने का सौभाग्य चाहती थी। प्रभु यीशु का पूर्ण त्याग ही नहीं किया जाएगा, उससे बैरी भी समझा जाएगा। ख्रिस्त विरोधी परमेश्वर और प्रभु यीशु के विरुद्ध विद्रोह करेगा, जैसा भजन संहिता 2 उसके 2-3 पद में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुलड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। तब हम आगे देखते हैं, न किसी देवता की। स्पष्ट है कि वह सब धर्मों का विरोधी होगा। वह केवल अपनी उपासना करवाएगा। वह सर्वधर्म एकता का समर्थक वरन उसे बढ़ाने वाला होगा। वह स्वयं ही धर्म होगा। लिखा है कि वह अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपनी ही प्रशंसा करवाएगा। मेरे प्रियो, यह महाक्लेश का भयानक समय होगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 13 अध्याय उसके 15-17 पद में लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें वह मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन ना करने पाए। आप उसकी छाप के बिना भोजन वस्तुएं भी खरीद नहीं पाएंगे। यह तानाशाही है। मेरे मित्रों, ये सब कुछ घटित होंगी, इसलिए आप यह ना सोचें कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, परंतु यह हकीकत है, एक भविष्यवाणी है जिसमें ये सारी घटनाएं घटेंगी। आज मुझे और आपको अभी से तैयार होना है। यदि आप वचन को नहीं जानेंगे तो निश्चय ही आप भी धोखे में पड़ जाएंगे और उस पशु की, उस व्यक्ति की उपासना करने लगेंगे। क्योंकि वह बिना छाप के आपको भोजन नहीं देगा। मेरे प्रियो, आज हम में से प्रत्येक विश्वासियों के लिए और हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है कि हम अपने सच्चे परमेश्वर को जानें, उसके वचन को जानें और उसके अनुसार जीवन जिएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु 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 रिश्ता हमसे जोड़ता है, ना तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु 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 जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु। जग में सदा है, आरू में बसा है, जा में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है, प्रभु की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है, प्रभु की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है।